एक राम कबीर के हैं जिनके वो प्रिय होने को तैयार हैं, एक राम गांधी के हैं जो धर्मों के आर पार जाते हैं, एक राम अवध के हैं वो राम जिनसे अवध की माटी बनती है, उसकी खुशबू बनती है। राम इस अवध के संस्कृति पुरुष हैं, इस राम के सब मुरीद हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। इस राम की लीला में सब शामिल हैं, रोजा रखने वाले भी और मंदिर जाने वाले भी। एक राम हमारे भी हैं जिनका मंदिर हमारे मन में है, और एक राम इलेक्शन में भी हैं जिनके बूते देश की सरकार भी बन जाती है। राम मंदिर को लेकर घमासान छिड़ा है, छोटी बड़ी हर पार्टियां खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताने में लगी हैं, और कुछ तो राम का विरोध करके भी सियासत चमका रहे हैं। सतयुग में तो भगवान राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौट आए थे, लेकिन कलयुग में उनका वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ। अयोध्या में मंदिर के नाम पर हिंदूवादी पार्टियां सरकार बना लेती हैं, लेकिन मंदिर बनाने के नाम पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। फर्ज कीजिए, अगर आज खुद भगवान राम इन ठेकेदारों को देख रहे होंगे तो क्या सोचते होंगे, मंदिर पर इनका पॉलिटिकल ड्रामा क्या प्रभु रामचंद्र को अच्छा लगता, क्या सोचते होंगे हमारे राम। राम मंदिर बनवाने की इस पूरी फिल्म में कई किरदार हैं जो मंदिर के बूते राजनीति के शिखर पर पहुंच गए, जिनसे आज आपको एक एक करके हम रूबरू कराएंगे। इन्हें देखकर आप सोचिएगा, क्या ये चाहते तो राम मंदिर बहुत पहले ही नहीं बन सकता था। सबसे पहले यह पोस्टर देखिए, जिसमें एक तरफ भगवान राम है तो दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्र नेता कहा गया है। पोस्टर उसी मुंबई का है जहां 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था। तब बीजेपी गांधीवाद समाजवाद के एजेंडे पर चला करती थी, लेकिन वो आडवाणी ही थे जिन्होंने दबाव बनाया कि पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को प्रखरता से उठाए। उसी समय राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवा दिया, बवाल मच गया, लाल कृष्ण आडवाणी का कद बढ़ता गया। विपक्ष ने मंदिर का मुद्दा छोड़ने को कहा तो आडवाणी गुजरात में सोमनाथ से राम रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। राम तो राम, पावरफुल आडवाणी को अब तो अयोध्या की जगह काशी और मथुरा की भी याद आने लगी। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव ने बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवा दिया। आडवाणी का कद पार्टी में सबसे ऊंचा हो गया, वे बीजेपी वाले हिंदुत्व के पहले पोस्टर बॉय बन गए। उसके बाद सारे चुनाव बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर लड़े। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी देश की राजनीति में नंबर एक की पार्टी बन गई। आडवाणी के राजनीतिक करियर में गिरावट साल 2005 में उस वक्त आई जब उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाकर उन्हें सेकुलर नेता बता दिया। आडवाणी के इस बयान से संघ नाराज हो गया। 2009 के चुनाव के बाद भी आडवाणी का राजनीतिक कद नहीं बढ़ सका। अब वह पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल है, लेकिन इस मार्गदर्शक मंडल की 2014 के बाद से कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के समय घटनास्थल से चंद मीटर की दूरी पर ही मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी उस दौरान पूरी मुहिम का चेहरा थे, तो मुरली मनोहर जोशी अविभाजित उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेता होने के नाते इस पूरी मुहिम का अहम स्तंभ थे। नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी द्वारा दिसंबर 1991 और 1992 के मध्य से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की गई एकता यात्रा के लिए संसाधन जुटाने की अहम भूमिका निभाते थे। जोशी के लिए मंदिर मुहिम के इस आक्रामक रुख ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर बेहतरीन लोकप्रियता दिलाई। जोशी भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर चुके थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी वाराणसी लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खाली कर दी, और उसके पास से राजनीतिक रूप से मुरली मनोहर जोशी की अहमियत लगभग खत्म हो गई। जोशी अब पार्टी से बिल्कुल किनारे कर दिए गए हैं, लेकिन वह पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में जरूर शामिल है। टीकमगढ़ में पैदा हुई साध्वी का शुरुआती दिनों में सियासत से कोई लेना देना नहीं था। वह अपने धार्मिक भाषणों के लिए चर्चा में रहती थी। साल 1984 में उमा भारती ने खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। साल 1989 में उन्होंने इस सीट से चुनाव जीता और 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की राम मंदिर के लिए रथ यात्रा में वे शामिल हो गई। उमा भारती के राम मंदिर निर्माण और हिंदुत्व पर आक्रामक भाषण के लिए उन्हें जाना जाता है। वह उमा भारती ही हैं जिन्होंने नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वे आंदोलन से लगातार जुड़ी रहीं, जिसका उन्हें फल भी मिलना अभी बाकी था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनी और 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन एक पुराने मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया और उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी। साल 2004 में लालकृष्ण आडवाणी के साथ हुए झगड़े के कारण वह चर्चा में रही और 2005 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासन भंग करने के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया। उमा भारती ने 2008 में अपनी खुद की पार्टी बनाई, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी पार्टी की दुर्गति हो गई। साल 2011 में उमा भारती ने बीजेपी में वापसी की और उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतारा गया। अब वह झांसी से लोकसभा की सांसद हैं। मोदी सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। 1987 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही था जिसने बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी भविष्य की राजनीति करने की सलाह दी थी। तब संघ प्रमुख थे बाला साहेब देवरस और अब सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत देश में सबसे शक्तिशाली संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं। कहते हैं कि पीएम भले ही नरेंद्र मोदी हो, लेकिन पूरा कंट्रोल इन्हीं का रहता है। अतीत में भी इस कट्टर हिंदूवादी संगठन की कोशिश रही है कि अयोध्या में राम मंदिर बना दिया जाए, लेकिन तब ये दुहाई दी जाती थी कि मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी के पास बहुमत ही नहीं है, विपक्ष की मंशा ही ठीक नहीं है। लेकिन साल 2014 के आम चुनाव में इन्हीं की मदद से बीजेपी ने न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि 282 सीटों के साथ वह बहुमत में भी आ गई। सरकार बने 4.5 साल बीत गए हैं, अब जाकर मोहन भागवत को राम मंदिर की याद आई है। कई मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले मोहन भागवत भी मंदिर बनवा पाने में या उसे लेकर दबाव बनाने में पूरी तरह से विफल साबित हो गए। प्रवीण तोगड़िया लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं, हिंदुओं के हित में कई भाषण भी दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में एक बार उन्हें सोमनाथ मंदिर जाने का अवसर मिला। जब उन्होंने सोमनाथ के ध्वस्त अवशेष देखे तो उनके जीवन की दिशा बदल गई, ऐसा कहा जाता है, और वे हिंदुत्व के पुनरुद्धार में लग गए। साल 1983 में प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए। साल 1992 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे राम मंदिर आंदोलन में वे शामिल हो गए, हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम किया। साल 2003 में अशोक सिंघल ने रिटायरमेंट की घोषणा की, तब अनौपचारिक रूप से प्रवीण तोगड़िया ही विहिप के मुखिया बन गए और 2011 में वे आधिकारिक तौर पर विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। विश्व हिंदू परिषद समूचे विश्व भर में हिंदूवादी संस्थाओं और संगठनों का एक समन्वय केंद्र है, जहां से राम मंदिर निर्माण की आग जलाकर रखी गई थी। तोगड़िया से भी ना हुआ कि वे मंदिर पर कुछ फैसला निकलवा सके। हुआ ये कि विश्व हिंदू परिषद से इनकी विदाई हो गई और अब ऑफिशियल तौर से राम नाम की राजनीति करने के लिए अपना एक अलग राजनीतिक मंच बना चुके हैं। तारीख 19 जून 1966, जगह शिवाजी पार्क दादर। 19 जून 1966 में स्थापना के बाद शिवसेना मराठी मानुस के मुद्दे पर राजनीति करती थी, लेकिन बाद में इसके संस्थापक बाल ठाकरे हिंदुत्व की ओर मुड़ गए। 1992 में बाबरी विध्वंस की जिम्मेदारी शिवसेना ने अपने कंधों पर ले ली। नतीजा ये हुआ कि शिवसेना हिंदुओं में लोकप्रिय होती चली गई। शिवसेना भी राम मंदिर निर्माण के बाद पुरजोर तरीके से उठाती रही। जो बीजेपी खुद मंदिर की राजनीति करती थी, उसके साथ शिवसेना सरकार में भी रही, लेकिन मंदिर का मुद्दा ठंडे बस्ते में ही रहा। शिवसेना ने ही यह नारा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बाल ठाकरे बीजेपी से ताउम्र मंदिर बनवाने की तारीख पूछते रहे, लेकिन अब वो काम उनके बेटे उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। 2014 से ही उद्धव ठाकरे सरकार में बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी। 4.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को राम मंदिर की याद आने लगी है। शिवसेना ने लोगों के लिए डेवलपमेंट के कितने काम किए ये गिनवाने के बजाय राम मंदिर के नाम पर अब उद्धव ठाकरे लोगों से वोट मांगने में जुटे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने प्रशंसकों के बीच हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर नरेंद्र मोदी राम मंदिर के बूते ही देश के प्रधानमंत्री बने। गुजरात में भी वह हिंदुत्व के बल पर ही मुख्यमंत्री बने थे। हिंदूवादी पार्टियों को मंदिर के लिए नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीद है, लेकिन राम मंदिर पर अनदेखी कुछ इस तरह से है कि आज तक नरेंद्र मोदी अयोध्या नहीं गए। इनकी पार्टी में आधे से अधिक सांसद और विधायक या तो मंदिर आंदोलन से उभरे हैं या फिर हिंदुत्व की बात करते हैं। ऐसे में जब 2019 में आम चुनाव है, एक बार फिर राम मंदिर की याद इन भाजपाइयों को आ रही है। अब तो चर्चाएं हैं कि पहले मंदिर नहीं राम का स्टैचू बनेगा। एक बार जरा गौर कीजिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मौजूदा समय में 272 सांसद अकेले बीजेपी के पास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक उनके समर्थन में है। सरकार में हिंदूवादी विचारधाराओं की तमाम राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन फिर भी राम मंदिर निर्माण नहीं, उस पर चुनावी फायदा लेने की मानो कोशिश की जा रही है। राम मंदिर बनेगा, अयोध्या में ही बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे, जैसे डायलॉग सुनकर अब तो हम भी ऊब गए हैं। हिंदुत्व के स्वयं घोषित ठेकेदारों, कब तक देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसान आत्महत्या, गिरती अर्थव्यवस्था जैसे दूसरे असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर लोगों को आपस में लड़ाते रहने का काम करोगे? हमारे दिल में तो राम है, आपके कहाँ हैं? नमस्कार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।